असाध्य हो सकता है।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहाँ हूँ? बस यहीं आसपास। मैडम 20 साल की इज़दवाजी जिंदगी के बाद ये आप कैसे सवालात कर रही हैं? एक नहायत ज़रूरी काम है।
आ गए, क्या कर रहे हो?
हाँ नहीं, तुम्हारे साथ आऊँगा। मेरी इज्जत उतार कर रख दी उन्होंने, खुदा की कसम। चलो चलो,
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये लो इस महीने का मेहनताना।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
देख रहे हैं हैदरी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे और इतनी बड़ी गाड़ी को देखा जरूर होगा, लेकिन फिर भी निकल गया। कोई बात नहीं, आओ सुनाए हैदरी साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
इज्जती साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरी तरह से आरज पर नजर रखी हुई है। आपका बेटा भी दूसरे तालिब इल्मों की तरह हर रोज सुबह टाइम पर स्कूल आता है और टाइम पर चला जाता है।
और फुटबॉल खेलता है?
नहीं।
वॉलीबॉल?
वो भी नहीं।
शतरंज?
नहीं।
और कोई खेल?
नहीं।
मतलब कोई लड़का खेलता ही नहीं?
क्यों नहीं जनाब, कुछ लड़के खेलते हैं और कुछ बच्चे आपके आरज की तरह नहीं खेलते।
अच्छा, मेरे ख्याल में जो बच्चे नहीं खेलते या नशेड़ी हैं या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है।
नहीं जनाब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे स्कूल में नशा कोई नहीं करता।
कोई नहीं?
सवाल ही नहीं।
अच्छा, ये जो लड़का आरश के साथ घूमता फिरता है उसे जानते हो?
हामिद की बात कर रहे हैं?
हाँ।
अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है।
कैसा इंसान है वो?
बस असल में उसके वालिदैन में अलहदगी हो गई है।
क्या? बस अलहदगी हो गई है क्या मतलब? हैदरी ठीक से बताओ।
बस अलहदगी, वो तो मैं यूं ही कह रहा
अच्छा,
था।
अच्छा, तो आरश मियां तलाकशुदा वालिदैन के बच्चे के साथ घूमते हैं।
लेकिन वही लड़का स्कूल का सबसे अच्छा तालिब इल्म है।
हैदरी, तुम फिर लीपापोती कर रहे हो, बस भी करो।
इज्जती साहब माफ कीजिएगा, जसारत कर रहा हूँ। आरश में आपको कौन सी ऐसी बुराई नजर आई जो आपको उस पर एतमाद नहीं रहा?
मैं उसे बचा रहा हूँ हैदरी।
जब कोई मसला नहीं है तो फिर इतनी भाग दौड़ किस लिए इज्जती साहब?
आप इस चक्कर में न पड़े, बाद में मसला पैदा हो सकता है। ये मेरा अपना तरीकेकार है, आप जा सकते हो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।
छोड़ो भी यार, तुम भी कितना सोचते हो।
तुम उन्हें नहीं जानते, बड़े अजीब आदमी है, अचानक सामने आ जाते हैं, खुदा की कसम।
दिमाग खराब है क्या उनका? अच्छा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं?
बस यूं ही।
हेलो बेगम, आप ठीक हैं? अच्छा ये बताएं, वो आपके जिगर का टुकड़ा घर पहुंचा या नहीं? तो ये लड़का गया कहाँ बेगम? अरे आपको क्या मालूम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आधे पौने घंटे पहले स्कूल में छुट्टी हो चुकी है।
उसमें एक प्रॉब्लम है।
अच्छा।
और वो ये है कि 13 घंटे से ज़्यादा का गेम नहीं है, और जब गेम ख़त्म हो जाता है तो GTR की तरह शहर के चक्कर नहीं
लगा। अच्छा चलो देखते हैं कौन कौन से गेम्स हैं।
हाँ पहले तुम लैपटॉप को तैयार करो।
हाँ खरीद लिया, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने का।
हाँ
अब्बा मैं 1-2 घंटे लेट आऊँगा, मुझे दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जाना है। अम्मी से कहिए कि परेशान ना हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
मेरे ख्याल में अजान हो गई है, चलो नमाज पढ़ते हैं।
चलो
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। फिर आप उसके स्कूल तक पहुंच गए?
ये लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा?
नहीं,
1 घंटे पहले छुट्टी हो चुकी है।
या अल्लाह, अरे बेटा बड़ा हो चुका है, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया होगा। वो तो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, आप तो जानते हो।
तुम कितनी भोली हो मरियम, दोस्तों के साथ घूमेगा। जाओ जरा खिड़की पर खड़ी हो जाओ।
अरे खिड़की पर क्यों?
तुम्हें इसे मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे ही वो नजर आए मुझे बता देना, जल्दी।
इज्जती।
जी बेगम।
दिन में कितनी बार उसके कमरे की तलाशी लेंगे? है
कहा ना तुम मतलब न रखो। देखो मरियम, 7 वर्षों तक तुमने इस बच्चे की परवरिश की, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। याद नहीं है दिन में कितनी बार इस बच्चे को अरंडी का तेल पिलाती थी, मैं कुछ बोलता था?
वो तो उसकी सेहत के लिए था।
तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये उसकी रूह के लिए है, उसके रवैये के लिए है, उसके मुस्तकबिल के लिए है मरियम। मुझे मालूम है एक दिन वो आकर मेरे हाथ चूमेगा। तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मेरी बात लिख लो। ये देखो 100 बार कह चुका हूं कि इसे हटा दो। हटाया? ला हौल वला कुव्वत इल्ला
हो गया है, जरा काबू में रहो।
तुमने ड्यूटी क्यों छोड़ दी?
कैसी ड्यूटी, यहाँ क्यों सब कुछ उलट पलट कर रख दिया? अभी आएगा तो क्या कहेगा?
तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको मैंने खिड़की के पास खड़े रहने को नहीं कहा था? जैसे ही वो नजर आए मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा।
देखो अब इसके कपड़े क्यों सूंघ रहे हो?
क्यों सूंघ रहा हूँ? क्योंकि बू ही सबसे अहम चीज है बेगम। अगर मेरे मरहूम वाली साहब की नाक तेज होती और मेरे भाई के कोट से उठने वाली बदबू सूंघ लेते तो उन्हें पता चल जाता और उसे रोक लेते, नशा छुड़ा देते, और आज मेरा भाई भी जिंदा होता और मेरी मदद करता। उसकी कब्र ना होती जिस पर मैं हर हफ्ते फातिहा पढ़ने जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा।
मेरा बेटा नशा नहीं करने वाला, ना इतनी लापरवाही ठीक थी ना इतनी एहतियात। अपनी बेटी पर जरा भरोसा रखो।
जब 30 बरस का हो जाएगा तो उस पर भरोसा करूंगा, अभी सिर्फ एहतियात करूंगा।
खुदा के लिए बेइज्जती।
हाँ ये क्या है मैडम, क्या है ये?
क्या है?
फहेश सीडी है।
क्या?
अपने कान बंद कर सकती हो। फहेश नहीं है।
अफसोस के लायक हो तुम। दरवाजे की आवाज, लगता है वो आ गया है।
डेढ़ घंटे बाद।
डेढ़ घंटे बाद की क्या बात है, आप इस कमरे का क्या करें?
जाओ दरवाजा बंद कर दो जल्दी।
तुम भी ना।
देखो एक तलाक नहीं दूंगा, तीन बार तलाक दूंगा, ताकि इधर कभी भूल कर भी नजर ना आओ। बस अब सब कुछ खत्म हो गया मरियम साहिबा, वो सारी यादें माजी की दास्तान हो गई। इस बार तुम्हें तीन तलाक दूंगा ताकि फिर कभी लौट कर वापस ना आ सको। समझिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ?
मेरे कमरे में झगड़ा कर रहे हैं आप लोग,
सलाम क्यों नहीं किया? तो क्या तुम सोच रहे थे कि अपने कमरे में हम लड़ते? मियां बीवी में जब भी अपने कमरे में लड़ाई होती है, बात तलाक तक जरूर पहुंचती है, इसीलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं।
बेटा खाना खा लिया है? माइक्रोवेव में खाना रखा है।
खाना खा लिया है मैंने, ये क्यों लगाया यहाँ पर? ओफो ओफो।
इज्जत ही, अगर तुम अपने मंगेतर के घर जाना चाहो तो एक रास्ता मुख्तसर है लेकिन बुरा, और दूसरा लंबा है लेकिन खूबसूरत। तुम कौन से रास्ते से जाओगे?
मुझे क्या मालूम मैडम, ये उल्टे सीधे सवाल छोड़ो, मुझे ये देखने दो कि किसका फोन है।
मेरा है।
क्या हुआ इज्जती, किस रास्ते से जाओगे, लंबा या छोटा?
जरा सब्र करो, ठहरो तो।
अब क्या हुआ?
देखा नहीं फोन की आवाज सुनकर कैसा बेचैन हो गया, मेरे हाथ से फोन छीन लिया। कहाँ हो तुम बेगम? मुबारक हो, मुझे तो लगता है कि आपके साहबजादे का कोई चक्कर चल रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए था, है ना? मैं भी अगर हर रोज सुबह अपने अब्बा की मशीन से शेव करता तो मैं भी अपने आप को बड़ा समझने लगता, है ना?
खुदा की कसम अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो।
मेरे ख्याल में तो तुम वही नफ्सियाती टेस्ट हल करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह तुम अपने इस लाडले को एक मुफीद फर्द की हैसियत से समाज में भेज सकोगी।
देखो मैं कल नहीं 6 बजे नहीं, देखो बाद में बताऊंगा मैं तुमसे, ठीक है? हाँ माय डियर।
हाँ मैं तो लंबे रास्ते का इंतखाब करूंगा बेगम, ताकि कभी पहुंच ही ना सकूं और बर्बादी से बच जाऊं।
हाँ माय डियर, कोई और जगह तलाश कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है? नहीं ओके।
देख रही हो कैसे बातें कर रहा है?
कैसी कर रहा है?
ऐसे कर रहा है गोया मुझे चिढ़ा रहा हो। हाँ
तुमसे क्या मतलब?
अरे मुझसे क्या मतलब, ये मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ, जानबूझकर इस तरह से बात कर रहा है। आरश बेटे जरा जल्दी करो, मुझे एक जरूरी फोन करना है, बस अब खत्म करो, जरा जल्दी करो।
हेलो जल्दी से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ।
देख रही है मैडम, सुने।
इसलिए कि तुम उसके पीछे पड़े रहते हो?
मैं पीछे पड़ा रहता हूँ? मैं सदके जाऊँ, सुना नहीं कैसे कह रहा था इंतजाम हो जाएगा, नहीं सुना क्या किया, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा था, सुना नहीं क्या? अभी सारी हकीकत पता चल जाएगी।
अरे इज्जती, अरे सुनो तो।
देखो मैं कल नहीं, नहीं नहीं 6 बजे तक नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना?
अब्बा क्यों बेटे, आरश कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं कुछ नहीं, बस आपसे एक बात कहनी।
कहो बेटा।
आपको याद है ना कि आपने मेरा मोबाइल ले लिया है?
हाँ बेटा।
उसके बाद कंप्यूटर भी हटा दिया?
हाँ बेटा।
अब टेलीफोन भी?
बहुत बहुत शुक्रिया, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं करना चाहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं तो कैसी प्रॉब्लम?
आपको छीनना चाहिए था। सब कुछ लेना चाहिए था।
नहीं लेना चाहिए था।
क्यों लेना
चाहिए? अगर मैं मोबाइल न लूं, फोन न हटाऊं तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे बेटा।
पढ़ नहीं पाऊंगा, इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक तो है ही, तुम कभी मत सोचना।
कभी मेरा नंबर खराब आया जो आप इस तरह कह रहे हैं?
खराब नंबर मेरे लिए मियार नहीं है, क्या बात करते हो?
तो फिर मियार क्या है?
मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों से जितना दूर रहो इतना ही
चीजों से
तुम्हारा ही फायदा।
आप मेरी फोन कॉल
सुन रहे हैं? नहीं हूँ, तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारे पास न रहे तो
आप सही कह रहे हैं। मतलब ये कोई प्रॉब्लम
नहीं? कोई प्रॉब्लम
बहस की गुंजाइश नहीं, बहस की गुंजाइश नहीं,
बिल्कुल देखो आरज बेटा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यकीन रखो। ओफो, फिर चला गया, एक फोन क्या ले लिया, इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अरे ये तो हामिद का फोन था।
उफ़ो,
बेगम ये लड़का इस तरह से ऊँ क्यों रहा है?
रात के 11 बज रहे हैं, सुबह से बिल्कुल नहीं सोया।
गौर किया तुमने, आजकल इसकी आंखें भी सुर्ख रहती हैं, है ना? आरश बेटा उठ जाओ,
नींद आ रही है।
बेटा कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे और अपनी अम्मी को बता दो, या इससे बेहतर है कि तुम अपने दोस्तों को बताओ। हाँ बेटा बताओ, मैं सुन रहा हूँ, वादा करता हूँ पूरी बात सुनूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ, कैसा रहेगा अगर आजकल रातों में हम दोनों पार्क चलकर बैडमिंटन खेला करें, कैसा रहेगा? चलोगे?
चलेंगे।
तो उठो चलते हैं,
कल मेरा स्कूल है, कहाँ जाएं?
सच कह रहे हो, थकन हो रही है, आंखें भी तुम्हारी सुर्ख हैं, भूख भी नहीं लगती, आजकल तन्हाई अच्छी लगने लगी है, बात क्या है?
मुझे लगता है कि मैं नशे का आदी हो चुका हूँ। शब बख़ैर।
सुना क्या कहा? सुना तुमने?
यही चाह रहे थे ना?
मोहसिन तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आते हो?
इसलिए नहीं आता कि आपका पहला नंबर सलामत रहे हमें साहब।
जवादी कह रहा था कि 100 बार फोन किया लेकिन जवाब नहीं दिया,
क्यों मोहसिन?
हाँ
मेरे मम्मी डैडी तुर्की गए हैं।
तुम्हारे मम्मी डैडी में कितना हौसला है,
तुम उन्हें समझते क्या हो? और तो और अब तो डैडी ने खिजाब लगाना भी शुरू कर दिया है।
क्यों?
क्योंकि उन्हें हमेशा टीनेजर रहना है और टीनेजर जो होते हैं उन्हें बच्चे पसंद नहीं होते। हम भी उनकी खुशी में खुश हैं, डैडी का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, सुबह सुबह आकर यहाँ खर्च करता हूँ, शाम को उनकी गाड़ी निकालता हूँ और सड़कों की खाक जानता हूँ, स्पोर्ट कार है। तुम लोगों की तरह किताबी कीड़ा नहीं हूँ।
मतलब फिलहाल अकेले हो?
बिल्कुल अकेला। हाँ ये बात और है कि हम लोग खानदानी तौर पर एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, ये विरासती एतमाद है, कल भी इत्मीनान है हम लोगों में। अब वो लोग सोचते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग जहाँ भी होते हैं हमेशा मुझे याद रखते हैं।
और जो ये इज्जती साहब है ना, अखबार के पीछे मुंह छुपाए स्कूल के सामने खड़े रहते हैं, माफ़ करना लेकिन हम लोग उन पर बहुत हंसते हैं। अच्छा अब तुम बकवास करना बंद करोगे या नहीं?
फिर हार गया।
तुम्हें मेरे बारे में क्या मालूम है जो मेरी बातों को बकवास कह रहे हो किताबी कीड़े? मेरे अब्बा तो मेरे टेलीफोन भी सुनते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे कुछ करना होगा।
क्या करोगे?
समझ में नहीं आ रहा है। کیفے، سیاست اور دوستی یاری، اپنا غم بیان کرو، ذہن کی گتھیاں کھول دو۔ سمجھ میں آیا؟
نہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟
سچ پوچھو تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک فلم کا ڈائیلاگ تھا، مزہ آیا نا؟
ہاں ہاں، بہت اچھا تھا۔ کام کیوں کر دیا؟
کیونکہ میں تم سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، کرو گے؟
ابھی تمہیں فٹ بال دیکھ رہا ہوں۔
دیکھو آرش بیٹے، تمہارے خیال میں ہم فٹ بال کیوں دیکھتے ہیں؟ ہاں بیٹے، تفریح کے لیے نہیں، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ فٹ بال بھی زندگی کی طرح ہے، کھیل کا میدان زندگی کی طرح ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا رکو، میں سمجھاتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں فٹ بال کے کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی اپنی زندگی میں میسی ہو جاتا ہے اور کوئی، اچھا چھوڑو، یہ دونوں کھیلتے ہیں، شاٹ مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن میسی کہاں اور دوسرے کہاں؟ میسی کے شاٹ ہمیشہ نشانے پر لگتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی صاحب جو تھے یا تم لوگوں کے شاٹ ہمیشہ دیوار پر لگتے ہیں یا پھر ہوا وہیں رہ جاتے ہیں۔ صحیح ہے بیٹے، ہمارے پاس ایک گول ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ اچھا آرش بیٹا، یہ بتاؤ تمہارا کیا مقصد ہے؟
مجھے کیا معلوم؟
مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہیں سوچا؟
نہیں۔
تو کیا ہمیشہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھنا چاہتے ہو؟
نہیں۔
ہر جواب میں نہیں معلوم نہیں کہتے ہو، کم سے کم یہ تو بتا دو کہ آخر کیوں مجھے اتنا چڑھاتے ہو؟
فٹ بال دیکھنے دیں گے؟
نہیں۔
دیکھیں، ہمیشہ میری اور آپ کی بات چیت کا یہی انجام ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ٹی وی بند کر دیتے ہیں یا میرا جیب خرچ بند کر دیتے ہیں یا پھر کچھ اور کرتے ہیں۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔
میں نے تو کوئی بری بات نہیں کی، تو کیوں مجھے اتنا غصہ دلاتے ہو؟
آپ مجھے خود سے آنے جانے کیوں نہیں دیتے؟ پھر کتنی محنت سے میں نے یہ لیپ ٹاپ خریدا تھا، یہ لیپ ٹاپ مجھے واپس کر دیجیے۔
شکر گزار ہونے کے بجائے ایسی باتیں کر رہے ہو، میں تو تمہارا ڈرائیور بن گیا ہوں، پھر بھی تمہیں شکایت ہے؟ لیپ ٹاپ بھی مناسب موقع پر دے دوں گا تمہیں۔
اور وہ مناسب موقع کب آئے گا؟
تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو بیٹا، جب موقع آئے گا تو خود میں تمہیں بتا دوں گا۔
السلام علیکم۔
اوف، پھر ہار گیا، جب بھی تم آتے ہو میں ہار جاتا ہوں۔ تمہارا جوڑیدار کہاں گیا؟
کون، ابا؟
نہیں بھائی، اس کے تبھی کیڑے کہہ رہا ہوں،
ہمیں اسکول میں۔
اچھا، تو تم نے بھی سیکھ ہی لیا، بہت اچھے، خوش ہوا میں۔ شروع کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہیں تمہارے ابا، اچھا ہاں، ان کا کیا حال ہے؟
دیکھو محسن، خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو۔
ہاں میں سن رہا ہوں۔
سوچو ذرا، ایک ایک سال تک ایک ایک پیسہ جوڑ کر، ساری خواہشیں دبا کر کچھ خریدو، پھر اسے چھپا دو کہ کسی کو نظر نہ آئے، لیکن تمہارے ابا اسے دیکھ لیں، پھر تم سے چھین کر کہیں اسے چھپا دے، تمہیں کیسے لگے گا؟
ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟
تمہاری جان کی قسم، اصل بات یہ نہیں ہے۔
دیکھو میری جان کی قسم کیوں کھا رہے ہو؟
میری بات سنو، میری بات یہ ہے کہ میں کل رات سے سوچ رہا ہوں کہ انہیں کیا ہوا ہے،
मुझे उन पर ताज्जुब होता है, सुबह से शाम तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि काम कब करते हैं, हमारी रोजी रोटी कैसे चलती है। कहो तो उनका टाइम टेबल बता दूं तुम्हें।
ये तो मुझे जरूर सुनना है।
देखो, सुबह मुझे स्कूल पहुंचाते हैं और दोपहर में स्कूल से बाहर आने से पहले सबसे पहले मुझे उनकी शक्लें दिखाई देती है। शाम और रात को तो घर में रहते हैं, बस मुझे ये नहीं मालूम कि स्कूल पहुंचाने से लेकर दोपहर तक वो क्या करते हैं। शायद कहीं बैठकर रात में मुझे फंसाने का तरीका सोचते होंगे। मैं तो थक चुका हूँ, देख रहे हो मेरी हालत क्या बना दी। आरश इज्जती जैसा लड़का स्कूल छोड़कर गेम खेलने आया है।
अच्छा, सच बताओ, अगर मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूं जिससे तुम्हारे पास उधर जाए तो क्या दोगे?
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ले लिया है उन्होंने, लैपटॉप भी ले लिया है, बस यही एक घड़ी बची हुई है।
तुम्हारे अब्बा मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मजाक कर रहा था मैं ठीक हूँ। ये जो अब्बा की गाड़ी और कार्ड की बात की थी ना, वो दरअसल दो तरफा दिली ताल्लुकात की वजह से था। सोचा शायद तुम्हें रिहाई मिल जाए, तुम तो जानते हो हम दोस्तों पर जान छिड़कते हैं और हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए कुछ जहमत उठाए। अगर कोई उठाता है तो अपनी ज़रूरत के तहत। समझ में आया? कह रहा हूँ, उसको समझ में आया?
कौन सी बात?
ये पूरी फिल्म तुम्हें कॉपी करके दूंगा बेवकूफ। बड़ी मुसीबत है।
बेगम, मैं स्कूल गया था आरश मियाँ को लाने, लेकिन वो तशरीफ नहीं रखते थे। मैं पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ हैं?
अस्सलाम वालेकुम।
मैंने पूछा वो कहाँ हैं?
इज्जत ही, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? खुदा की कसम, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हम घर से भागने लगे हैं। रट लगाए रखते हो, आरिश कहाँ है? आरिश क्या कर रहा है, कहाँ गया है?
मैं सिर्फ उसकी निगरानी करना चाहता हूँ, बस।
निगरानी यूं नहीं की जाती कि डंडा लेकर उसके सर पे खड़े हो जाओ, हिले तो पड़े।
मैं डरता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं?
तुम नहीं समझते, अपने बेटे को गंवा रहे हो। देखा नहीं कि अब वो तुमसे बात भी नहीं करता है, तुम्हारे सामने सिर्फ एक्टिंग करता है, बहुत जिद्दी हो गया है। अकलमंद आदमी, आंखें खोलो। एक दिन वो आएगा जब बेटा हाथ से निकल जाएगा, तब मैं देखूंगी कि तुम कैसे मेरा सामना करते हो।
खुदा उसकी मगफरत करे, मेरा भाई भी आरश की ही उम्र का था।
सब लोग तुम्हारे भाई जैसे नहीं हैं, सबको नशे की आदत भी नहीं पड़ती।
यहाँ है
आरिश बेटे, ये बताओ तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है?
क्या फर्क पड़ता है?
अब यही डिप्रेशन बचा था तुम्हारा।
जिसका बाप भी मेरे अब्बा जैसा होगा, अगर डिप्रेशन का शिकार ना हुआ तो वो एबनॉर्मल समझा जाएगा।
बेटा जरा अब्बा का भी ख्याल रखो, बेचारे बहुत परेशान हैं।
मैंने क्या किया?
तुम ठीक हो, वही थोड़ा हसास हैं।
थोड़ा
ठीक हो जाएंगे बेटे।
अभी कहाँ हैं?
सो रहे हैं।
तो फिर मैं जरा पढ़ाई कर लूं, ठीक है?
जाओ बेटा, जाओ।
अब क्या कहूं, हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है। तुम्हें मालूम ही नहीं कल कैसे आ सकता हूं। सलाम पहुंचा देना और कहना कि कल मुलाकात होगी। हाँ नहीं, मुमकिन नहीं है, मोहसिन भी आएगा, एक फोन कर लेना, ठीक है? नहीं
इज्जती,
मेरा सलाम कहना, बाद में मिलूंगा।
तुमने तो कहा था कि अब उसके फोन नहीं सुनोगे।
झूठ बोला था। तुम जाओ खाना तैयार करो। अरे
यार,
हेलो इंजीनियर साहब।
हेलो।
हाँ इंजीनियर साहब। अरे आरिश बेटे तुम हो?
हेलो।
मैंने सोचा लाइन कहीं और मिल गई।
हेलो।
हाँ बेटे। बस जरा मुख्तसर करो बेटा, मुझे एक जरूरी फोन करना है जल्दी। हाँ बेटा।
हेलो, दो मिनट बस।
फजूल में काम खराब कर दिया।
आरश साहब
ठीक हो?
दुआएं हैं।
देर कर दी।
अफो, तुम्हारा मूड फिर ऑफ है। सुनो शायर क्या कहता है। कहता है कि इंसान दो किस्म के होते हैं, एक पहली किस्म के, दूसरे किस्म के। तमाम
तुम्हारे मिजाज में तजलजल पैदा हो गया है? हाँ हो गया है। बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हो। नहीं, जल्दी गुस्से में नहीं आते।
ग्यारह बज चुके हैं।
मैंने उसे जाने की इजाजत दी है, हामिद के साथ पढ़ रहा है, कल इम्तिहान है।
ग्यारह बजे रात को बेगम?
तुम्हें घबराहट की बीमारी है और बहुत बुरी तरह।
मैडम ये सारे टेस्ट छोड़ें, आप जो भी कहें वो बीमारी मुझे है। हाँ घबराहट भी है, जरा देखें मेरा हाथ कैसे कांप रहा है। आप हामिद को जानती हैं जो उसे उसके घर भेज दिया? हामिद के घर का नंबर दो मुझे।
नामुमकिन, मैं तो हामिद को जानती नहीं। मुझे अब क्या मालूम कि उसके वालिदैन में अलहदगी हो गई है। असली बात पता क्या है, इस घर में सब कुछ बस तुम जानते हो।
काश आरश से मोबाइल ना वापस लिया होता। आरश जल्दी करो। आरश क्या हुआ, इस तरह से क्यों खड़े हुए? जितना हो सके जल्दी बैग में डालो। मुझसे ज्यादा तवक्को ना रखो, मैंने दोस्ती की वजह से तुम्हारा साथ दिया है कि अपने अब्बा को सबक सिखा सको। जल्दी करो, सब कुछ बैगों में भर लो। क्या हुआ, क्यों कांप रहे हो?
शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है।
लो, ये हमारे दोस्त,
इनका क्या करें?
क्या करें, कल से हम अपने मोबाइल सेट के रंगों को कपड़ों के मुताबिक करेंगे, ठीक है ना?
बकवास मत करो।
ए बदतमीज। अच्छा क्या सच में तुम्हारे अब्बा ने दुकान नौकर के हवाले कर दी है? कल से तो इनके नौकर के होश उड़ जाएंगे।
बेचारा वो।
अपने हाल पर रो। तुम ही कह रहे थे ना कि लैपटॉप छीन लिया है, फोन सुनते हैं, कपड़े सुनते हैं, है ना? ये तुम्हारे अब्बा और उन जैसे लोगों के लिए एक सबक होगा। बहरहाल तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऑपरेशन कामयाबी से पूरा हुआ, मिशन कंप्लीटेड। अब इस दुनिया में किसी के दिल में भी हमारे लिए हमदर्दी नहीं होगी, न दोस्त न अहबाब। समझे क्या कह रहा हूं? सलाम वालेकुम कैप्टन साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं आरश इज्जती का बाप हूं, मेरे बेटे को क्या हो गया?
आप तशरीफ रखें। आपका लड़का अपने एक दोस्त के साथ कार में जा रहा था, गश्त लगाने वाले साथियों को उन पर शक हो गया। कार की तलाशी लेने पर उन लोगों को इन बैगों के साथ थाने में लाया गया। बज़ाहिर इसमें चोरी का माल है।
माफ कीजिएगा जनाब, क्या उसमें मंशियात थी?
जी नहीं, मंशियात नहीं है, क्योंकि अगर मंशियात होती तो आपको फोन नहीं करते, वो हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है। आपके बेटे के दावे के मुताबिक ये सब कुछ आपकी दुकान का माल है।
जी हाँ,
सही है कैप्टन साहब, ये सब कुछ मेरी दुकान का है, बिल भी मौजूद है।
अगर आपकी दुकान का है तो इतनी रात को आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा था?
कैप्टन साहब, मैंने खुद उसे वहाँ लाने के लिए भेजा था।
लेकिन क्यों?
असल में सुबह सवेरे ही ये माल दूसरे शहर भेजना था।
आप श्योर हैं?
जी कैप्टन साहब।
अच्छी बात है, आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन ये सब यहीं रहेगा। बराए करम बिल के साथ तशरीफ लाएं और अपना सामान ले जाएं।
जी जरूर कैप्टन साहब, जरूर।
खुदा हाफिज।
इज्जती मामला और मत बिगाड़ो।
इससे पहले कि आप मुझे मारे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ना तो मैं नशे का आदी हूं और ना ही चोर और ना ही कुछ और। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहां खुद नहीं आया, आपने मुझे यहां ढकेला है। खुदा की कसम मैं थक गया हूं, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं बचपन से इजाजत के बगैर पानी भी नहीं पी सकता, हमेशा दूसरे बच्चे मुझ पर हंसते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
वो मैं डरता था।
किस चीज से आप डरते थे? मेरे साथ कितना रहे आप, हमेशा मेरे मुकाबले में रहे।
मैं चाहता था कि
मुझ पर जरा भरोसा कर ले, थोड़ा सा भरोसा।
रोहिण मू